बूढ़ा मंत्री रो उठा, कहा कलेजा थाम, अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम। वैदेही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों पर और गुसाओं पर सोते हम देख नहीं सकते, इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि वहाँ भी बन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को, कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों से धोने से अलग नहीं होती, प्रभु यदि आप चलना नहीं चाहते हैं तो केवल वैदेही बेटी को ही आप वापिस भेज दें, अगर वैदेही वापिस चली जाएगी तो आधी जान प्रजा को मिल जाएगी। लेकिन प्रभु राम कुछ कहते उससे पहले ही जानकी जी कहने लगी, हे मंत्री महोदय, आप जरा इतना बतावें, क्या सोने की चमक कभी भी सोने से अलग होती है? क्या चांदनी कभी चांद से अलग रह सकती है? क्या बिजली कभी घन को साथ छोड़ सकती है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर पत्नी अपने पति का साथ कैसे छोड़ सकती है? और वेदों में कहा भी गया है, मानस में भी आया है कि बिना पति के पत्नी का जीवन कैसा है। जिय बिनु देह नदी बिनुवारी तैसई नाथ पुरुष बिनु नारी। जानकी ने ऐसा कहा तो सुमंत मंत्री अब आगे कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन इतने में ही लक्ष्मण कहने लगे, हे मंत्री महोदय, सुमंत जाना और माता कैकेयी से इस प्रकार से कह देना कि अब वो घी के चिराग जलवाएं, क्योंकि हम ही लोग उनके काटे थे, सो निकल गए, अब वो निष्कंटक राज चलाएं। और ये भी कह देना वो हमको क्षमा करें, हम उनके बेटे हैं, वो हमारी महतारी हैं, उन्होंने जो हम पर ये श्रद्धा दिखाई है, हम आजीवन उनके आभारी हैं। लक्ष्मण इसके आगे कुछ कह पाते, लेकिन बीच में ही विनम्र भाव से भगवान श्री राम कहने लगे, क्या कि हे भाई सुमंत, इस छोटे भाई की बातों को आप अपने दिल की तख्ती पर मत लिख लेना, सौगंध है आपको मेरी, जो कुछ इसने कहा है वहां जाकर आप मत कहना। 14 वर्ष जब पूर्ण हो जाएंगे तो हम आकर के अपने माता पिता के दर्शन पाएंगे, अपने विचारों के मंदिर में अपनी श्रद्धा को पूजने के लिए आएंगे। इतना कहकर के भक्तवत्सल भगवान ने उस बूढ़े सुमंत को अपने हृदय से लगाया और नाना प्रकार से समझा बुझा कर कोसल में वापस लौटाया। इधर तो धीरे धीरे रथ वापस जा रहा है अयोध्या की तरफ। धीरे धीरे रथ चला आज अवध की ओर, धीरे धीरे रथ चला आज अवध की ओर, इधर तीर सुसरती के पहुंचे राज। मंत्री धीरे धीरे रथ को लेकर अयोध्या वापस जाते हैं और उधर प्रभु राम कहां आ जाते हैं भक्तों, अपने भक्त के घाट पर केवट के पास। अरे केवट के सामने खड़े हैं प्रभु आज और याचना कर रहे हैं, क्या ले आओ भैया, अरे ले आओ भैया केवट देखो ना, वो हमें तो पार जाना है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अरे आज तो आप मेरे बंधन में आए हैं, आज तो आप मेरे घाट पर आए हैं, आज आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, कैसे जई हो, कैसे जई हो प्रभु सरिता पार, नाथ नैया ना नहीं नैया ना। मिलाप हो रहा है। तो आज भक्त एक देख रहा है क्या कि आज प्रभु केवर से याचना कर रहे हैं। संसार को देने वाला वो परमपिता परमात्मा अखंड ब्रह्मांड कोट जगदाधार प्रभु आज केवर से याचना कर रहा है क्या। गंगा जी किनारे राम जी पुकारे, सुनो भैया केवट रे किनारे लाओ नैया रे। गंगा जी किनारे राम जी पुकारे, सुनो भैया केवट रे किनारे लाओ नैया रे। कहाँ रहे राम जी कहाँ रहे लक्ष्मण, कहाँ रहे सीता मैया रे किनारे लाओ नैया रे। राम जी पुकारे गंगा जी किनारे, भैया केवट रे किनारे लाओ नैया रे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना। मित्रों यहां पर थोड़ा सा आपको मार्मिक भाव दिखाऊं भक्त और भगवान का। कुछ विद्वानों का तो ऐसा कहना है कि केवट ने न नाव दी और न प्रभु राम ने नाव मांगी। कि मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना, नाव ही नहीं मांगी और ना केवट आया। और कुछ तार्कियों का भाव है कि नाव मांगी, मांगी नाव। श्रोता प्रेमियों भाव ना पर ही निर्भर है। अगर ना को आप इधर से उधर करते हैं तो भाव बदल जाता है, और ना को उधर से इधर लाते हैं तो भाव बदल जाता है। मांगी नाव ना, और इधर मांगी नाव और ना केवट आना, कहा ही तुम्हार मरम हम जाना। मांगी नाव, एक तार्की महोदय कहने लगे कि भाई केवट ने भगवान को नाव नहीं दी या नहीं लाया, लेकिन सवाल इस बात का होता है कि प्रभु राम ने केवट से नाव ही क्यों मांगी। अब जरा विचार करो बंधुओं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि भाई केवट से प्रभु राम नाव क्यों मांग रहे हैं। अगर हमें दवा की जरूरत है तो हम दवा की दुकान पर दवा ही तो मांगेंगे, या उससे कहेंगे भैया ये आपके रसगुल्ले क्या भाव है, ऐसा तो होगा नहीं। जब प्रभु को गंगा के पार जाना है और प्रभु को गंगा के पार उतरना है, और ये सभी जानते हैं कि नाव पर बिना बैठे नदी का पार कैसे हो सकता है, तो प्रभु आज नाव नहीं मांगते तो क्या मांगते। लेकिन दूसरे तार्की महोदय कहने लगे कि प्रभु अगर चाहते तो बिना नाव के भी उस पार जा सकते थे। का भाई वो कैसे, का सुनो, जिन प्रभु ने राजा बलि के यहां पर एक कदम में एक लोक, दूसरे कदम में दूसरा लोक और तीसरे कदम में तीसरा लोक नाप लिया हो। श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंध में राजा बलि चरित्र में ये लाइनें आती हैं, कौन सी, कि कहते हैं प्रभु ने अंश तलक सूरज के अंश ढांप डाले। कहे डाले और तीन ही कदम की गिनती में तीनों ही लोकनाथ डाले। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ क्या, बस थोड़ी रकम बकाया है और दे चुका दान के तीन कदम, बस आधा कदम बकाया है। मंगते की तबीयत भर दे हे राजन। हाँ राठौर भैया क्या कह रहे हैं, हमारे पावन भगवान राजा बलि से कहते हैं प्रभु तो हे राजन, और मंगते की अब तबीयत भर दे, दे चुका दान के तीन कदम, अब आधा कदम अदा कर दे। कदम में एक लोक, दूसरे कदम में दूसरा लोक और तीसरे कदम में तीसरा लोक नाप डाला, उन भगवान को गंगा नदी कौन बड़ी चीज थी मित्रों। अरे एक पैर इधर रखते और दूसरा पैर गंगा के उधर रखते और पार चले जाते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो तारकी महोदय कहने लगे भाई अगर प्रभु राम अकेले होते तब तो ऐसा कर लेते ना, लेकिन साथ में जो लक्ष्मण और सीता प्रसंगा बनकर लगे हुए हैं उन्हें कैसे पार ले जाते। कहने लगे अगर प्रभु चाहते तो वो भी पार हो जाते। का वो कैसे, का सुनो। सीता का गोदी ले लेते, ऐसा कभी हुआ है, हजारों बार हुआ है। विद्वानों ने कहा है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, अगर आपत्ति का समय आ जाए और अगर आप मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो शास्त्रों का ऐसा मत है कि इसमें कोई दोष नहीं आता। मान लीजिए आपका घर जंगल के किनारे हो, रात्रि में आपकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो जाए, ले जाने का कोई साधन ना हो और अगर ले जाना जरूरी हो डॉक्टर के यहाँ, तो क्या उसे आप अपने कंधे पर बिठाकर नहीं ले जाएंगे, और अगर ले भी जाते हैं तो इसमें दोष क्या है। सीता का गोदी ले लेते, और लक्ष्मण, लक्ष्मण की अंगूरी गही लेते, और इतई उठाई उतई धई देते। मगर ऐसा क्यों नहीं किया। आवाज चित्र सेन कर ध्याना, आवाज चित्र सेन कर ध्याना, मांगी ना होना के बटाना। आज प्रभु को अपने चित्रसेन गंधर्व भक्त की याद आ रही है। कौन सा चित्रसेन? एक बार दुर्वासा ऋषि जिस समय इंद्र की सभा में पहुंचते हैं, सभी ने तो उठ करके ने साष्टांग प्रणाम किया, मगर चित्रसेन गंधर्व भूल से दुर्वासा को प्रणाम न कर सका। ये तो आप सभी पूर्व परिचित हैं कि दुर्वासा ऋषि कितने क्रोधी हैं। फौरन ही उन्हें क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया, जा चित्रसेन तू जड़ हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा, तुझमें ये भी सभ्यता नहीं है कि अपने से महान पुरुषों को कैसे प्रणाम करना चाहिए या उनके लिए क्या शिष्टाचार होना चाहिए। जिस समय चित्रसेन गंधर्व दुर्वासा ऋषि के चरणों को पकड़ लेता है, हे मुनिवर, हमने तो ये सुना है संतों का हृदय मुलायम होता है, संत बड़े दयालु होते हैं, इसलिए नाथ मुझसे जो भूल हो गई है उस अपराध को आप क्षमा करें और मुझे आप ये बतावें कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। कहा, जाओ चित्रसेन, तुम जड़ तो अवश्य बनोगे, पेड़ तो अवश्य बनोगे, लेकिन कहां, मृत्यु लोक में जाकर, और जानते हो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। आगे जब त्रेता युग आई है, आगे जब त्रेता युग आई है, विष्णु जगत माँ राम कहई है, केवट तुम का जमही कटई है, ले जा तुम्हारी नाव बनई है, नैया पे प्रभु का बिठलई है। आगे जब ते तायुग आई है, हाँ अभिलाष सिंह भैया जी जरा ध्यान दें आप, आगे जब त्रेता युग आई है, केवट तुम का जब कटई है, ले जा तुम्हारी नाव बनई है, नैया पे प्रभु का बिठलई है। तब हुई है तुम्हारो कल्याणा, तब हुई है तुम्हारो कल्याणा, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, कहे तुम्हारो मरम हम जाना, मांगी नाव ना केवट। एक भाव तो ये रहा मित्रों, और कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि प्रभु राम नाव क्यों मांग रहे हैं। जिस समय जानकी जी का विवाह भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से संपन्न होता है, उस वक्त जानकी जी की तीन इच्छाएं थी कि हम जल यात्रा करें, थल यात्रा करें और नव यात्रा करें। और प्रभु ने जानकी जी से ये वादा किया था कि हे प्रिय, हम तुम्हारी तीनों इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। थल यात्रा तो पैदल चलते हुए आ रहे हैं, इच्छा पूरी हो गई। नव यात्रा जब होगी, जब सीता हरण होगा। और प्रभु विचार कर रहे हैं कि जल यात्रा का संयोग आज से बढ़कर बढ़िया कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए चाहते हैं कि नाव में बैठ करके आज जानकी की ये तीसरी इच्छा की भी पूर्ति कर देना उचित होगा। लेकिन आज केवट तो ऐसा होड़ लगाए बैठा है कि जैसे उसे प्रभु राम के पास नाव लेकर आना ही नहीं है। प्रभु ने जिस वक्त कहा कि हे भाई केवट, अरे नाव ले आओ, केवट कहता है, सरकार मैं आपका मरम जानता हूं। अरे का भैया, कौन सा मरम? तो देखिए भोजपुरी भाषा में क्या कह रहा है केवट भगवान श्री राम से। केवट बोलल रामचंद्र से, हाथ जोड़े असबानी हे बाबू, अरे हे बाबू, हे बाबू राउर मरम हम जानी, हे बाबू राउर मरम हम जानी। Hola।
रामचंद्र से हाथ जोड़ असबानी हे बाबू हे बाबू हे बाबू राहुल मरम हम जानी
अरे भगवान ने कहा भैया कौन सा मरम जानते हो
पाथर सेना ऋतु कैला हमरे ओ घाट दया कर आइला आए
और कैला माने किया
पाथर सेना ऋतु कैला हमरे ओ घाट दया कर आइला आए एक विनती बाटे बाबू एक विनती बाटे बाबू नैया बहुत पुरानी हे बाबू हे बाबू हे बाबू राहुल मरम हाथ जोड़ असबानी हे बाबू हे बाबू हे बाबू राहुल मरम
हमारी आप सुन ले ध्यान दे करके प्रभु ने कहा भैया वो कौन सी बात
कुटुम भरे कै नाव सहारा कैसो कैसो करिए गुजारा
विनाश मेरा नाव का ही एक माध्यम है परिवार को जिलाने का और मेरे पास कोई दूसरा कार्य नहीं है
कुटुम भरे कै नाव सहारा कैसो कैसो करिए गुजारा रत्ती भरना झूठी बाटे रत्ती भरना झूठी बाटे जाने गंगा महारानी हे बाबू हे बाबू हे बाबू राहुल मरम केवट बोलल राम चंद्र से केवट बोलल राम चंद्र से हाथ जोड़ असबानी हे बाबू हे बाबू हे बाबू राहुल मरम
बात हमारी आप सुन लें मैं किस प्रकार से आपकी चरणों की सेवा करूंगा कैसे आपको पार उतारूंगा
पहले राउर चरण पखरी बे फिर नदिया के पार उतरी बे पहले राउरी चरण पखरबे फिर नदिया के पार उतरबे अगर मन भावे तो बोला अगर मन भावे तो बोला घर पठवतो जल आनी हे बाबू हे बाबू हे बाबू राउर मरम केवट बोलल राम चंद्र से रामचंद्र से हाथ जोड़ हसबानी हे बाबू हे बाबू हे बाबू राउर मन हो।